जून 2020 है। मैं आपको बताऊं पिछले दिवस के रेफरेंस से संबंधित ही गंगा सागर की यात्रा का विवरण सुनाऊंगी। हमने पिछले दिनों देखा कि श्री महाराज जी की दिल पावर संकल्प शक्ति बड़ी महान थी। वो जो कुछ सोचते जो कुछ कर वो कर ही लेते थे या भगवान उनसे करवा ही देते थे। वो तो स्वयं भगवान थे, अवतार थे। तो यहाँ तक की यात्रा में हमने देखा कि रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आई। यहाँ तक कि शिव बाबा भी इन दर्शन देने के लिए आए और हम सब भगवान शिव पार्वती और गणेश के दर्शन करके धन्य हुए। शाले से निकलकर हम सब लोग तेजी से बस स्टैंड की ओर बढ़े। बसें छोटी छोटी थी और पीछे से उसके ऊपर कवर नहीं था। ऐसे ही आमने सामने सीटें लगी थी जैसे मानो एक छोटे छोटे ट्रक थे। उन पर हम भी शीघ्रता से बैठ गए और बस चल पड़ी। पूछने पर पता चला ये बस अब आगे जा करके समुद्र के किनारे खड़ी होगी और वहां हमें स्टीमर के द्वारा आगे बढ़ना होगा। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। लगभग सभी दोनों माताएं भी जगदीश भाई जी भी सभी को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। और मैंने नींद में अर्ध निंद्रा में क्या देखा कि भगवान की आकाशवाणी होती है और वो कहते हैं आकाशवाणी में कि आपके सामने से पार्वती और गणेश थे। क्या आपने पहचाना नहीं? मैं चेतन हुई जागृत अवस्था में बैठकर मैंने महाराज जी से पूछा कि ये क्या है, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ये आकाशवाणी है ये सत्य है और सचमुच भगवान भोला शंकर बाबा की दृष्टि मैंने आ गया था। पर बाबा की दृष्टि भी बड़ी तेज है, इसमें कुछ सिकता नहीं। शिव महाराज जी के वचन आज भी कानों में गूंज रहे हैं और मैं डायमंड हार्बर का दृश्य देख रही हूँ और बसवेश में पर मेरे सामने साकार हो उठता है। और कभी कभी मैं अपने को शिव परिवार में पाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे शिव भगवान वेश बदलकर इंद्रियवान में बनकर हमारी पिक्चर ले रहे थे और माता पार्वती भी एक आम महिला के रूप में सम्मुख आती है। गणेश जी भी खेल रहे हैं पर इतनी दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु हमारे पास का जो हम उन्हें पहचान पाते। खैर महाराज जी की बड़ी कृपा हुई कि हमने उनको देखा, उनके दर्शन किए और उनसे बातचीत भी की। अब हमारी बस बढ़ते बढ़ते बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और लगभग दो घंटे के पश्चात हमारी बस समुद्र के किनारे जा रुकी, जहाँ से हमें स्टीमर में बैठकर खाड़ी बंगाल से में से होकर सुंदर द्वीप की ओर जाना था। लॉन्च में जब हम बैठे तो मेरे माता जी को चक्कर सा आने लगा। वो कहने लगी कि भाई देखो ये इतना बड़ा समुद्र है, मुझे तो कुछ भय सा लग रहा है। हमने कहा आप लेट जाओ, हमने उनको सीट पर लेटा दिया और मैं पूरा दृश्य देखते हुए जो मैंने अपनी पुस्तकों में पढ़ा था खाड़ी बंगाल के विषय में वो देखती हुई गंगा जी के विषय में, गंगा जी के मुहाने के विषय में, उन सब को आत्मसात करते हुए साक्षात देखते हुए अपना दिव्य आनंद उठा रही थी। और आखिर अब हमारा स्टीमर सुंदर बन के एक किनारे रुक गया और सभी यात्री उससे निकल करके पैदल चल पड़े। हमें 6-7 किलोमीटर पैदल चलना था। सब ने अपने अपने कपड़े की पोटली अपने हाथों में लिए पकड़े हुए चल रहे थे और हमारे जो दो सेवक थे जो हमें गंगोली जी ने दिए थे, वो हमारी रोटियां उठाकर सामान उठाया था उन्होंने, वो भी मार्ग को गाइड करते हुए चल रहे थे। मैंने देखा सुंदर वन बहुत बहुत सुहावना था, जिसमें 5 फुट के केले के जो दरख्त थे उनमें केले लगे हुए थे। क्या सुहावना दृश्य था, और कल कल करके छोटी छोटी पानी की कुल्ले बह रही थी। हाथ से थोड़ा सा रेत निकालो तो पानी बाहर आ जाता था, और वो पानी मीठा था। हालांकि वो समुन्द्र के बिल्कुल किनारे था, फिर भी हम उसमें से पानी निकाल कर पीने लगे। आखिर हम चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ की गंगा मैया सहस्र मुख बनाकर सागर में जा मिलती है, इसे ही गंगा का मुहाना कहते हैं। मुझे याद आ गया ज्योग्राफी वाली टीचर हमें पढ़ाया करती थी गंगा का मुहाना, और नक्शे में दिखाया करती थी, देखो यहाँ गंगा जी खाड़ी बंगाल में बहते हुए सहस्र मुख सहस्र रास्तों से सागर में जा मिलती है। और मुझे सब बचपन में जो कुछ पढ़ा था स्कूल में वो याद आ गया, और मैं बहुत ही प्रसन्न हुई कि देखो मेरे भाग्य में गंगा जी का ये सहस्र मुख वाला मुहाना भी देखने को मिला। वहां पहुँच कर हमने देखा कि लाखों छोटी छोटी झुमियां जो पलाव से बनाई गई है, जिनमें यात्री लोग निवास करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा खुला रेतीला मैदान है, और उसको बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया है। हजारों ट्यूबे लगी है जिनके प्रकाश से रात्रि भी दिन में बदल गई थी। हम प्रायः बहुत सायंकाल ही महादेव में उस मैदान में पहुंचे थे। हमारे साथियों ने हमें एक झुंगी ले दी और हमने अपना सामान उस झुंगी में रख दिया, लेकिन उसकी दूसरी वाली आधी झुंगी में कुछ बंगाली लोग बैठे हुए थे जो कि मछलियां पका रहे थे। इतनी दुर्गंध थी कि चलना फिरना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन क्या करें, हम गंगा सागर के दर्शनों के लिए ये सब कुछ सहते हुए हमने पूरी रात वहीं व्यतीत की उसी झुंडी में। दिल करता था कि जो साथ में भोजन लाया इसे भी ना खाएं। फिर हम थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात गंगा सागर की ओर चले, जहाँ सागर खाड़ी बंगाल गंगा से मिलता है, जहाँ गंगा जी खाड़ी बंगाल से होकर के सागर से मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं। कहते हैं कि कपिल देव जी मुनि जी ने अपना मंदिर कुछ समय के लिए, मतलब जनवरी महीने में 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ देर, कुछ एक महीना या 15 दिन सागर से बाहर रहते हैं, ताकि भक्त लोग कपिल देव जी के दर्शन कर सके। और कई बार तो कहते हैं कि इतना जल होता है कि बहुत मुश्किल से कपिल देव जी के मंदिर का सिर जैसा ही दिखाई देता है। फिर हम भी वहाँ कपिल देव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा, बंगाल सरकार ने प्रबंध भी उत्तम किया है, पूरे भारत का दर्शन हो रहा है। कहने का ये है कि पूरे भारत के लोग तरह तरह के, कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई दक्षिणी भारत के, तो कोई उत्तरी भारत के, कोई पहाड़ों के, मतलब हर किस्म के लोग हर ड्रेस में वहाँ हमें देखने को मिले। और अनाउंसमेंट हो रही की ध्यान रखो जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। तो महात्मा जी ने ऐसा किया स्वामी जी ने कि वो स्वयं आगे आगे चले, मुझे उन्हें आगे आगे चलाया, और दोनों माताएं मेरी पीछे, उसके पीछे स्वयं चले, और फिर उनके पीछे स्वयं चलते हुए जगदीश जी को भी अपने साथ लिया। इस तरह से उस भारी भीड़ में इतना बड़ा कुंभ मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं। इतने लोगों का इकट्ठे होना ये विराट दर्शन ही था। स्वामी जी ने कहा माता जी देखो विराट दर्शन यही है, विराट दर्शन इसे ही कहते हैं विराट दर्शन। लाखों नहीं पता नहीं शायद करोड़ों लोग थे वहां पर। फिर हम आगे बढ़ते गए और कपिल देव जी के दर्शन किए, मतलब हम वहाँ मंदिर के सम्मुख पहुँच गए और हमने जाके कपिल देव जी के दर्शन किए, और माता जी ने कपिल देव जी के लिए जो वस्त्र और भेंट लाई थी वो उन्होंने बड़े प्यार से कृष्ण देव जी के आगे रख दी। पर इतनी भीड़ थी कि ये दो मिनट भी वहाँ खड़े होकर के दर्शन करना कठिन हो रहा था। फिर हम वापस अपने घास की कुटिया की ओर आ गए, पर मछलियों के दुर्गंध के कारण रात भर नींद नहीं आई। पुनः स्वामी जी ने कहा 4 बजे ही उठ जाना है और पुनः जाकर के गंगा सागर में स्नान करना है। इसलिए हम सब जल्दी ही 3 बजे उठे और फिर वहाँ पहुँचे और गंगा सागर में जाकर हमने स्नान किया और पूजा करके हम फिर लौट आए। और फिर हमने झुंगी सप्तम सामान उठाया और उसी प्रकार जैसे 6 किलोमीटर पहले उस सुंदर वन से होकर पैदल आए थे, वैसे ही अब वापस आ गए और स्टीमर में बैठ करके हम डायमंड हार्बर पहुंचे और वहां से हमने पुनः ट्रेन पकड़ी और हम 13 जनवरी 1974 को कलकत्ता पहुंच गए। 14 जनवरी को महाराज जी ने कहा कि चलो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, इसलिए बेलूर मठी चलेंगे। और दक्षिणेश्वर में मकर संक्रांति का पर्व होने से भारी भीड़ थी। दक्षिणेश्वर में काली के दर्शनों के लिए हजारों लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। हम भी उसी लाइन में लग गए और धीरे धीरे शिव मंदिर और काली के मंदिर में पहुंच गए और वहां दर्शन किए और 12 शिवलिंगों की पूजा भी की। फिर स्वामी जी ने कहा कि चलो अब हम श्री राम कृष्ण देव जी के कमरे में जाते हैं और जब वहाँ हम दो क्षण के लिए कहेंगे। तो महाराज जी वहाँ नहीं रुके और पूछने पर मैंने कहा बाबा जी आप क्यों नहीं, स्वामी जी आप क्यों नहीं रुके? तो उन्होंने कहा अगर मैं रुक जाता तो वापस कुल्लू नहीं जाता। फिर उन्होंने माँ शारदा का निवास नौबत खाना देख कर कहा देखो अब बाबा की माँ कहाँ है, और ये कहते हुए रो पड़े थे जो भोजन बना बना कर खिलाती थी। इस प्रकार दर्शन करने के पश्चात अब हम बेलूर मठ गए। रास्ते में स्वामी विवेकानंद की झांकी मिली और मठ में पहुँच कर हमने कुछ पुस्तकें और फोटो आदि खरीदे और वहाँ पर रामकृष्ण मिशन में लाइब्रेरी में जब हम गए तो स्वामी जी ने कहा मम्मी जी वो देखो 3 जो सेंग लिखी हुई है बंगला भाषा में, इसे लिख लो, निकालो अपनी ड्राइवी और पेन। मैंने ड्राइवी और पेन निकाला, मैंने देखने लगी है तो कोई भाषा और है ना, इंग्लिश है ना हिंदी है। मैं तो केवल 3 भाषाएं जानती थी, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी। तो मैंने कहा स्वामी जी ये तो कोई भाषा है। तो स्वामी जी ने वहां बैठे ब्रह्मचारी को कहा कि ये आप बाबा की मम्मी को इंग्लिश में लिखा दो। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में लिखा दिया। तो पहला जो सेंग थी वो रामकृष्ण परमहंस की थी जो अभी भी मंदिर में मैंने लगाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ था वेरी फ्यू पीपल नो दैट द एम ऑफ लाइफ इज टू सी द गॉड। और दूसरी थी माँ शारदा की, उस सेंग में लिखा हुआ था इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स रेदर सी योर ओन फॉल्ट। और तीसरी थी स्वामी विवेकानंद की सेंग जिसमें लिखा था इंडिया इज इमॉर्टल इफ शी परसिस्ट्स हर सर्च फॉर गॉड। तीनों को मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख लिया और इसकी हिंदी भी कर ली। उन दिनों में सुल्तानपुर में रघुनाथपुर में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में पढ़ाया करती थी। जब मैं वापस आई तो स्वामी जी ने कहा था कि इनको कागज पर बड़ा बड़ा करके लिखवाओ और मंदिर में लगा दो। और मैंने वैसा ही किया था, वो सेंग आज तक मंदिर में वैसे ही लगी हुई है। अच्छा, और फिर वापस आते हैं, फिर कुछ पुस्तकें फोटो आदि खरीद करके स्वामी जी ने अपने लिए कन्नड़ भाषा में पुस्तकें ली। उन्होंने एक गीता की पुस्तक भी ली लेकिन वो कन्नड़ में थी। तो हमें लगा कि स्वामी जी कर्नाटक के हैं, ये कन्नड़ भाषा ही पढ़ते होंगे। फिर वहां से फोटो ये लेकर के हम वहाँ अपने कल्चर जो हमारा रहने का ठिकाना गेस्ट हाउस